धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए।
ओम शांति। आप सभी ऊंचते ऊंच बाप के, श्रेष्ठते श्रेष्ठ बाप के, ऊंचे श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी हो, स्वदर्शन चक्करधारी हो, महान आत्माएं हो, ऑलराउंड पार्टधारी हो, आप आत्माओं का शुरू से लेकर अंत तक हीरो पार्ट ही रहा है। जैसे लौकिक पिक्चर में जो हीरो पार्टधारी होता है उसका पार्ट शुरू से लेकर आखिरी तक हीरो का ही पार्ट रहता है, ऐसे आप आत्माएं शुरू से लेकर अंत तक अर्थात संगम युग तक आप विशेष पार्टधारी हैं। आप अपने पार्ट को देखो कि जब आप आत्माएं परम धाम में हैं, अपने को परम धाम ले चलो, जब आप आत्माएं परम धाम में हैं तो एकदम भगवान के करीब हैं। आत्माओं की दुनिया है लेकिन सभी आत्माओं में आप आत्माओं की चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। कितनी ज्यादा चमक आप आत्मा में, जो 63 जन्म तक एक ही बात पुकारा था कि भगवान मुझे अपने पास बुला लो, अब आत्मा भगवान के पास बैठी है। भगवान की किरणें आत्मा में आ रही है। कितना महानता का अनुभव है, मास्टर भगवान बनकर बैठे हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माएं ही परम धाम में भगवान के समीप रह सकती है, बाकी कोई भी धर्म पिता हो, कोई भी आत्मा हो, परम धाम में भगवान के समीप नहीं रह सकती है। तो सोचो आप आत्मा का कितना विशेष पार्ट है कि परम धाम में आत्मा भगवान के पास बैठी है। देखो तीसरे नेत्र से भगवान को, जो गाते थे ये अखिया हर दर्शन की प्यासी, जी भरकर देख लो, ये आप आत्मा का विशेष पार्ट है। समझ सहित इसके बाद आप आत्मा परम धाम से उतर कर जब साकार सृष्टि पर आते हो तो सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान प्रकृति में आकर पार्ट बजाते हो। उस समय की दुनिया देवताओं की दुनिया होती है, अपने को देवताओं की दुनिया में ले चलो जो आपकी दुनिया है, जहां आप रहकर राज्य किया है। उस समय मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थी। नेचुरल ब्यूटी थी, सतयुग में देखो कैसे सिंहासन पर बैठते थे, कैसे राज्य चलाते थे, कैसे टहलते थे, जो सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के संसार में कोई भी आत्मा सतयुग में नहीं जा सकती है। तो सतयुग में आपका कितना विशेष पार्ट है, इस सृष्टि पर कितना ऊंचा पार्ट, वंडर ऑफ द वर्ल्ड सतयुग है। उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड के आप मालिक थे, कितना ऊंचा पार्ट था। जब त्रेता युग में आते हो तो जिस राम राज्य की सब कल्पना करते हैं ऐसा राम राज्य था, और आप राम बनकर प्रैक्टिकल में राज्य किया है। वो स्वप्न देखते हैं, संकल्प करते हैं ऐसा था, और आप प्रैक्टिकल में राम बनकर राज्य किया है, कितना विशेष पार्ट। द्वापर युग में आपका पार्ट देखो कितना महान है, कि आपका जो सतयुग त्रेता में स्वरूप था उस स्वरूप की मूर्ति बनाकर द्वापर युग में पूजा शुरू हुई, अर्थात आप मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। पहले चैतन्य में थे, द्वापर युग से आपकी पूजा शुरू हुई। पूजा भी कितना विधिवत, कितना प्यार से, कितना स्नेह से पूजा करते। आप मूर्ति का दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते। तिरुपति बालाजी में देखो, दो दो तीन तीन दिन रात लाइन लगती है, तब नंबर आता है दर्शन करने का। वो कौन है? आप सभी तो हैं। कितना ऊंचा आपका पार्ट द्वापर में, आपके लिए कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, आपके किए हुए कर्म का यादगार शास्त्र बनाते, आपकी महिमा का कीर्तन गाते हैं। सोचो द्वापर युग में कितने महान थे। जब आपने भक्ति भी की तो सबसे पहले आव्यभिचारी भक्ति शिव बाबा की आपने की। भगत में भी नंबर वन भगत रहे। कलयुग में देखो कितना विशेष पार्ट। आप संगम युग पर जो ब्राह्मण बनकर रियल में पार्ट बजाया, उस ब्राह्मण का यादगार कलयुग में ब्राह्मण के नाम से सारा काम होता है। कुछ भी काम होगा ब्राह्मण के द्वारा ही होगा, चाहे मरना चाहे जीना चाहे पूजा पाठ करना, सब कुछ ब्राह्मणों से ही है। कर्म आपने किया, आपके नाम की इतनी महिमा कलयुग में है, जो कि आपके नाम से कलयुग में कितने ब्राह्मणों का जीवन निर्वाह हो रहा है। सोचो कितने महान हो। फिर संगम युग में आपको ही भगवान मिला और किसी को नहीं मिला, कितनी बड़ी बात है। और भगवान के साथ सिर्फ मिला ही नहीं, भगवान के साथ साथ आपका पार्ट है। भगवान के साथ खुदाई खिदमतगार बनकर खिदमत कर रहे हो। सोचो भगवान के साथ हम खिदमतगार हैं, भगवान के सहयोगी हैं, भगवान के कर्तव्य में हम मददगार हैं। और ब्राह्मण आत्मा ही फिर फरिश्ता बनती है। भारत को छोड़कर विदेश में सभी देशों में वो फरिश्ते को ही भगवान मानते। जैसे भारत में देवी देवताओं की पूजा है, ऐसे विदेश में फरिश्ते की मान्यता है। वो सिर्फ सोचते हैं ऐसे पंख वाले फरिश्ते थे, उड़ते थे, आकर मदद करते थे, और आप प्रैक्टिकल में फरिश्ते बनकर सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते बाबा के साथ साथ। तो देखो आप परम धाम से लेकर संगम युग तक आपका पार्ट हीरो पार्ट, पूरे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट है। लेकिन इस श्रेष्ठ पार्ट का आधार क्या है? इस श्रेष्ठ पार्ट का आधार है संगम युग में आपने सभी प्रकार के खजाने जमा किए, सब प्रकार के खाते से स्वयं को संपन्न बनाया है। जब संपन्न बनाया है तब संपन्न राज्य मिलता है। तो तीन प्रकार के खाते हैं, जिस तीनों प्रकार के खाते में आत्मा को संपन्न बनाना है। पहला है पुरुषार्थ से प्रलब्ध का खाता, पुरुषार्थ से प्रलब्ध का खाता जो सतयुग त्रेता में चलता है। जो अभी पुरुषार्थ करते हो, इस पुरुषार्थ के आधार से आपकी जो प्रलब्ध बनती है, उस प्रलब्ध के आधार से सतयुग त्रेता में सुख भोगते हो, अपनी प्रलब्ध भोगते हो। तो पुरुषार्थ से प्रलब्ध का खाता। दूसरा है सेवाओं से पुण्य का खाता, सेवाओं से पुण्य का खाता जो द्वापर और कलियुग में चलता है। पुण्य का खाता द्वापर और कलियुग में चलता है। और तीसरा है संतुष्ट रहकर, संतुष्ट करके दुआएं प्राप्त करना, अर्थात दुआओं का खाता जो संगम युग पर और धर्मराज के आगे चलता है। दोनों जगह संगम युग पर और धर्मराज के आगे। तो पुरुषार्थ से प्रलब्ध का खाता, सेवा से पुण्य का खाता, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। अब आत्मा अगर तीनों खाते से संपन्न बन जाए, इस संगम युग पर बनना ही है। अगर बन जाए तो पूरे कल्प में हीरो पार्टधारी बन जाएगी। इस समय जितना खाता से भरपूर होंगे उतना ही मुख्य पार्टधारी बनेंगे। अगर आपका खाता कम जमा हुआ तो उस आधार से पद कम हो जाएगा, लेकिन अगर खाता भरपूर है तो आदि क्या अनादि से लेकर परम धाम से लेकर संगम युग तक हीरो पार्ट धारी रहेंगे। तो पहला है पुरुषार्थ से प्रालब्ध का खाता। क्या पुरुषार्थ करना है जिससे आत्मा की प्रालब्ध बन जाए? वो पुरुषार्थ है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना, पास विद आनर बनना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों में फुल मार्क्स लेना। ये नहीं एक कम एक ज्यादा, अगर कम ज्यादा है तो फुल मार्क्स नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेना है। पहली बात है ज्ञान। ज्ञान की आत्मा में धारणा हो जाए, जीवन ज्ञान स्वरूप बन जाए, हर कर्म इंद्रिय ज्ञान स्वरूप बन जाए, उसका आधार तीन है। एक है ज्ञान जीवन में आ जाए, धारण हो जाए। एक है बुद्धि की दिव्यता, दूसरा है ज्ञान का दान, और तीसरा है विचार सागर मंथन। बुद्धि की दिव्यता, ज्ञान दान और विचार सागर मंथन, ये तीन बातें अपनाओ तो आपके जीवन में ज्ञान की धारणा हो जाएगी। पहली बात है बुद्धि की दिव्यता। बुद्धि सबके पास है, लेकिन सारा मदार है दिव्यता पर। ये जो आप बाबा की मुरली सुनते हैं कि शेरनी का दूध तो बुद्धि की दिव्यता के लिए आप मुरली में सुनते हैं कि शेरणी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो पहली बात है अपनी बुद्धि को पवित्र बनाओ, दिव्य बनाओ, शुद्ध बनाओ, तो बाबा का ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा। आप मुरली सुनते समय अगर आपकी बुद्धि दिव्य नहीं है तो अनुभव होगा, पूरी मुरली सुन लोगे, एक तरफ सुनते जा रहे हो दूसरी तरफ भूलती जा रही है। मुरली सुनने के बाद अगर चेक करो तो वही लास्ट वाली कोई एक पॉइंट याद रह जाएगी, बाकी सब भूल जाती। इसका कारण है मुरली सुनी लेकिन देह भान में रहकर दैहिक बुद्धि रख करके मुरली सुनी, इसलिए कोई पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठी। लेकिन बुद्धि को दिव्य बनाकर सुनो। दिव्य बनाने का आधार क्या है? आपकी बुद्धि कैसे दिव्य बनेगी? दिव्य बनाने का आधार है अपने मैंपन की बुद्धि को, देह भान की बुद्धि को बाबा के आगे अर्पित कर देना। आप बाबा के आगे अर्पित करो तो देना ही लेना हो जाएगा। बाबा ने कहा था कि जैसे बाजार में जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, तो देना ही लेना होता है। ऐसे मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि भगवान के आगे अर्पित कर दो तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाएगा। कैसे अर्पित करें? अर्पित करने की विधि इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से कि बाबा और इस मैंपन की बुद्धि को, देह अभिमान की बुद्धि को आपके आगे अर्पित कर रही हूं। इस श्रेष्ठ संकल्प से बाबा को अर्पित करो तो तुरंत बाबा का जवाब मिलेगा, अच्छा बच्चे, जब आपने बाप को दे दी तो मैंपन की बुद्धि से आपका अधिकार हट गया, अब इस बुद्धि पर बाप का अधिकार है, आपका नहीं है। तो बाप का अधिकार अर्थात बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे बुद्धि को चलाओ। आप निमित्त बन गए, मालिक बाबा हो गया, तो निमित्त बनकर श्रीमत प्रमाण बुद्धि से जजमेंट करो, अपनी मत के प्रमाण नहीं, श्रीमत के प्रमाण जजमेंट करो तो आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिल जाएगा। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि बुद्धि को समर्पित करना किसे कहा जाता है। मान लो कोई भी भाई बहन है, आप सेंटर पर हैं या यहां हैं, आपसे जो बड़े भाई बहने हैं, मान लो उन्होंने कुछ आपको कहा, तो जिस प्रकार से आपको डायरेक्शन दिया खुद वैसा नहीं कर रहे। जैसे मान लो क्लास में बताया जाता है आप अमृत वेले जरूर उठो, उठकर योग करो कहा गया। अब मान लो जिसने आपको डायरेक्शन दिया कि उठो जरूर करो, बाबा की श्रीमत है, लेकिन वो खुद योग में नहीं आया, उसने डायरेक्शन दिया लेकिन खुद योग में नहीं आया, तो आपकी बुद्धि क्या जजमेंट देगी, क्या संकल्प आएगा? यही कि कहते हैं वो खुद करते नहीं। होगा ये संकल्प आएगा या नहीं? कोई तो मुंह से बोल भी देते हैं, कई तो संकल्प तक रखते। अब वो सुबह क्यों नहीं उठा, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है तबीयत रात को ज्यादा खराब हो गई हो, नींद ना आई हो, ये भी कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है रात को देर तक कुछ सेवा का प्रोग्राम बन गया हो, कहीं किसी जगह से फोन आ गया हो, ये भी हो सकता है, या अलबेलापन भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। आपने देखा कि वो सुबह योग में नहीं आए। अगर आपने अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित कर दी है तो क्या आपको संकल्प आएगा, क्या आपकी बुद्धि निर्णय देगी? अगर अर्पित की हुई है तो ये निर्णय देगी कि भगवान ने कहा है सी फादर डोंट ब्रदर एंड सिस्टर, बाप को देखो किसी भाई बहन को नहीं। या आज तक कभी मुरली में कहा है क्या किसी भाई बहन को देखो? नहीं कहा है ना। अगर भाई बहन को देखो तो उसकी विशेषता देखो, ये बाबा ने कहा है। नहीं तो कहा है आल बेस सी फादर एंड मदर, मात पिता को देखो। अगर बुद्धि अर्पित की हुई है तो बुद्धि ये निर्णय देगी, अगर अर्पित नहीं की हुई है तो उसकी कमी दिखाई दे जाएगी। क्योंकि अर्पित की हुई बुद्धि दिव्य बन जाती है, दिव्य बुद्धि में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती, दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य चीज ही दिखाई पड़ती है, दिव्य के द्वारा अवगुण वाली चीज नहीं दिखाई पड़ती। जैसे उदाहरण के रूप में बाबा तो सदा दिव्य है, इसलिए उसको किसी बच्चे की कमी नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि सदा दिव्य है। उदाहरण के रूप में आज से 4-5 साल पहले की बात है, इसी डायमंड हॉल में अव्यक्त बाबा आया हुआ था, मुरली चल रही थी, तो आप लोगों को क्लास में बाबा के दिन डायरेक्शन दिया जाता है कि कोई ताली नहीं बजाना दोनों हाथ की, बाबा कहे तो बजाना नहीं तो नहीं बजाना। उस दिन भी ऐसे था, बाबा मुरली चला रहा था, कोई ऐसी पॉइंट आई जो जोर से बच्चों ने ताली बजा दी, जैसे अभी देखते हो कभी कभी बजा देते हैं, तो ताली बजा दी। थोड़ी देर के बाद ताली बजना बंद हुई, बाबा मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर के बाद फिर ताली बजी। जब दोबारा ताली बजी तो बाबा ने कहा बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज बहुत होता है, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, इसलिए आवाज की ताली नहीं बजाओ। मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर बाद फिर ताली बजी तो फिर बाबा ने कहा बच्चे ताली दोनों हाथ की नहीं बजाओ, एक हाथ की बजाओ। ऐसे बाबा ने करके दिखाया, एक हाथ की ताली बजाओ। फिर उसके बाद बाबा मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर बाद फिर जोर से ताली बजी। अब आप सोचो कि जब बाबा सन्मुख डायरेक्शन दे रहा है, मना कर रहा है, उसके बावजूद भी ताली अगर बजा रहे हैं तो आपके मन में क्या संकल्प आएगा, क्या संकल्प आएगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा? बाबा मना कर रहा है तो नहीं बजाना चाहिए। हम भी क्लास में बैठे थे, मुझे भी संकल्प आ गया कि जब सन्मुख भगवान मना कर रहा है तो क्यों बजा रहे हैं? ताली तो इसीलिए बजाते हैं भगवान को खुश करने के लिए कि बाबा जो आपने कहा है मुझे पसंद है, मैं जरूर करूंगा, इसीलिए ताली बजाते हैं। और जब भगवान को ताली पसंद है ही नहीं तो क्यों बजाते हैं? तो इधर तो बच्चों के मन में संकल्प चल गया, लेकिन भगवान तो दिव्य है, भगवान को तो बच्चों का अवगुण दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान ने क्या कहा फिर? बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है और बच्चों को मना करता है, बच्चे ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब आप देखो भगवान उस बात को किस रूप में लिया, हम किस रूप में ले रहे थे, भगवान ने किस रूप में लिया। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है, दिव्य में अवगुण कमी की चीज दिखाई नहीं पड़ती है, अवगुण वाली चीज भी गुण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसलिए बुद्धि की दिव्यता के लिए अपनी बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दो, फिर अर्पित की हुई बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो। कुछ भी बात आए तुरंत सोचो कि बाबा ने मुरली में इसके लिए क्या कहा था, तुरंत बाबा और बाबा की श्रीमत याद आए, तो आपकी बुद्धि दिव्य बनती जाएगी और आज्ञा की पालना के कारण, बाप का आशीर्वाद मिलने के कारण आपको भगवान का वरदान भी मिलता जाएगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप बन जाना, मास्टर ज्ञान का सागर बन जाना सहज हो जाएगा। अगर आज बड़े भाई बहनें दादियां जिसका जीवन ज्ञानमय हो गया है, ज्ञान का अर्थ ये नहीं पॉइंट याद कर लेना, उसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, उसको पंडित कहेंगे। ज्ञानी अर्थात ज्ञान आपके जीवन में आ जाए, ज्ञानमय जीवन, उसको कहा जाता है ज्ञानी। सिर्फ पॉइंट याद करना ज्ञानी नहीं है। तो ये जो बने इसका कारण यही है, अपनी बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दिया। सब चीज अर्पित करना सहज है, ब्रह्मा बाबा अगर नंबर वन गया तो इसी एक विशेषता के कारण। तन कईयों ने समर्पित किया, धन कईयों ने समर्पित किया शुरू से लेकर, परिवार कईयों ने समर्पित किया, लेकिन जो नंबर मिला वो सिर्फ बुद्धि की समर्पणता के कारण। बुद्धि समर्पण करके भगवान के ऊपर सौंप दिया। एक ही शब्द, बाबा जैसा कहे, बाबा ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है, मैं ऐसे कहता हूं नहीं, बाबा ऐसे कहता है। और मम्मा का क्या शब्द था? हुक्मी हुकुम चलाए रहा है, हम चल रहे, जैसा मालिक हुकुम करे हमें उसी पर चलना है। अपनी बुद्धि को टोटल भगवान पर अर्पित कर दिया था, इस कारण से बुद्धि दिव्य बन गई और दिव्य बनने के कारण ज्ञान की धारणा सहज हो गई, जीवन ज्ञानमय हो गया। दूसरी बात है ज्ञान का दान देना। आप जितना ज्ञान का दान देंगे तो आपकी जीवन में वो धारणा आ जाएगी। जैसे मान लो आपने अपने लौकिक घर में या आपस के भाई बहनों में आपने सुनाया, बाबा ने ऐसे कहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, मान लो सुना दिया, कह दिया। अब वो आपके जीवन में है या नहीं, लेकिन कह दिया है तो करना पड़ेगा, तो धारणा हो गई या नहीं। जैसे देखो परिवार वालों में लौकिक में कहा कि हम आश्रम पर जाते हैं, वहां गुस्सा छूट जाता है, बुराई छूट जाती है, मान लो घर में कह दिया। अगर घर में गुस्से की परिस्थिति आएगी तो भी आप गुस्से को कंट्रोल कर लोगे। करोगे कंट्रोल या नहीं, क्योंकि कह दिया है। तो दान देने से धारणा होती, जो कहोगे वो करना सहज हो जाता है। तो दूसरा है ज्ञान दान, और तीसरा है विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन का अर्थ ही है सोच सोच करके बुद्धि में बिठाना, नहीं मैं तो हूं ही आत्मा, मैं आत्मा ही तो इस शरीर को चलाती हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। अगर बार बार यही सोचते रहो, इसी पर मनन करते रहो, इसी विचार पर सोचते रहो, तो वो स्वरूप आता जाएगा। तो ज्ञान की धारणा का आधार ये तीन बातें। और दूसरा है योग। हम निरंतर योगी बन जाएं, उसका आधार है तीन बातें इसमें भी। पहली बात है अशरीरी होने का अभ्यास। जितना जितना आत्मक स्वरूप में टिकते जाएंगे उतना बाबा से कनेक्शन स्वतः जुड़ता जाएगा। जैसे शरीर समझने से शरीर के संबंधी, शरीर का कर्म धर्म सब स्वतः याद रहता है, ऐसे आत्मक स्वरूप में रहने से बाबा की याद, बाबा का कर्म, बाबा का धर्म स्वतः ही याद रहेगा। तो पहला है अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा है बाबा ही मुझ आत्मा का संसार है, सब कुछ बाबा है, सब कुछ बाबा में है और सब कुछ बाबा ही है, इतना बाबा का हो जाए। और तीसरा है बाबा से सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार। तीनों बातें हैं, एक है अशरीरी होने का अभ्यास, आप निरंतर आत्मक स्थिति में टिक जाएं, उसके लिए सिर्फ मैं आत्मा हूं ये सोचने से नहीं हो पाएगा। आत्मा की चार स्टेजेस हैं, उन चारों में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, चार बातें मुरली में सुनते होंगे। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चारों का अभ्यास करेंगे। इनका अभ्यास अलग अलग रूप में है, तब आप निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। और बाबा ही संसार है, बाबा ही सब कुछ है, इतना बाबा पर अर्पित हो जाना। तीसरा, सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल के प्यार का भी तीन रूप है, प्यार, प्रेम, स्नेह, तीनों में अंतर है। प्यार, प्रेम, स्नेह, ये भी तीनों रूप समय समय पर करते रहेंगे तब भगवान से सच्चा प्यार जुटेगा। और ऐसे सच्चे प्यार वाले की याद स्वतः रहती है, फिर बाबा की याद नहीं भूलेगी। ठीक है, ये विशेष अभ्यास करते चलो। अच्छा, टाइम हो गया है। ओम शांति।